जोड़ लीजिए हाथ और मेरे पीछे दोहराइए, रिपीट आफ्टर मी। जैसे मेडिटेशन, थोड़ा सा ध्यान करना है और ध्यान को भगवान के शब्द के उच्चारण के साथ करना है मन को एकाग्र करने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय।
देवकीनन्दनाय च।
देवकीनन्दनाय च।
नन्दगोपकुमाराय। गोविन्दाय नमो नमः।
गोविन्दाय नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य।
जय श्री कृष्ण चैतन्य।
प्रभो नित्यानन्द। श्री अद्वैत गदाधर। श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे।
हरे राम
हरे राम। हरे राम
राम राम हरे हरे।
राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आप सबका धन्यवाद है, आप आज शनिवार को भगवत कथा में पधारे हैं और विवेक जी गुप्ता और सारी कमता जी का धन्यवाद करते हैं कि हम सबको अपने घर में भगवान की कथा सुनने और कहने के लिए अवसर दिया है, मौका दिया है। प्रश्न ऐसा है कि काम हम करते हैं तो उसके बदले में कुछ चाहते हैं इस दुनिया में, तो इसको चाहना चाहिए कि नहीं चाहना चाहिए, ये प्रश्न ये है। बेसिकली ह्यूमन बाय नेचर सेल्फिश है, अपना भला होगा वही काम करेगा, ये नेचर ह्यूमन का है ही ऐसा। और दूसरा प्रश्न था कि कुछ सोशल फंक्शन में तो हम जाते हैं, लेकिन जहां कुछ रिचुअल आ जाते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा नहीं है। तो बेसिकली ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, तो सोशल सोसाइटी के सब संबंध रखने हैं, लेकिन फिर भी अपने घर का जो नियम है उसका पालन भी करना है। तो इन दोनों बातों को देखकर भगवद गीता का एक ये श्लोक भगवान अर्जुन को जब कहते हैं, कर्मण वा अधिकारस्ते, कर्मण वा कर्मणे वा अधिकारस्ते, अर्जुन तुमको कर्म करने का अधिकार है, मा फलेषु कदाचन, फल का अधिकार तुमको नहीं है। बड़ा आश्चर्य लगेगा, कोई अगर कहे कि मेरी दुकान पे आके नौकरी करो, तुम्हारे को नौकरी काम देता हूं लेकिन तनख्वाह नहीं दूंगा तो कोई काम थोड़ी करेगा। लेकिन भगवान ऐसे बोले तो इसका अर्थ क्या है, क्या फल नहीं मिलेगा? इसको ठीक तरह से बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो आप स्कूल में जाते हैं ना 8th क्लास में, करिश्मा आपके एग्जाम देने का आपको अधिकार है, यू हैव राइट टू अपियर इन द एग्जाम। रिजल्ट देने का आपको अधिकार है क्या? रिजल्ट देने का अधिकार आपको नहीं है ना। स्टूडेंट हैज नो राइट टू गिव द रिजल्ट, ही हैज ओनली राइट टू अपियर इन द एग्जाम। तो ये हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं इस दुनिया में? ये फिलोसॉफी हम एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? अच्छा, तो रिजल्ट मिलती नहीं है क्या? अपने टाइम पे रिजल्ट मिलती है ना। वो रिजल्ट कैसी मिलती है वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी मेहनत आपने जरूर की है, वो रिजल्ट वो आपके ऊपर क्यों नहीं रखी है? आपको अपना इवेल्यूएशन करने के लिए क्यों नहीं कहा गया है? अच्छा ऐसे हो जाता, ये अगर बेईमान होते तो ऐसे करते और ईमान ना होते तो कभी पास नहीं होते,
पास ही नहीं होते, फेल ही होते।
अगर मुझे मालूम है कि मेरे सिलेबस में जो है वो सब मुझे नहीं आता है तो मैं कैसे पास होऊंगा? और हमें मालूम है कोई भी स्टूडेंट जो सिलेबस पे ऊपर रखा हुआ है काम वो सब जब परीक्षा में जाता सब याद थोड़ी होता है। वी डोंट नो एवरीथिंग। आप इंजीनियर हैं, आपको मालूम है कि क्या आपने पढ़ा है, वो थोड़ी याद है जो किताब में लिखा हुआ है। ये तो 2-4-5 चीजें उसने पूछी हमको आगे इसलिए हम पास हो गए। तो दूसरे के रिजल्ट देने से हमको ज्यादा फायदा होता है, अपनी रिजल्ट देने से हमको दोनों तरफ से नुकसान है। बेईमानी करें तो भी नुकसान है, ईमानदारी करें तो भी नुकसान। जबरदस्ती फर्स्ट डिवीजन देंगे तो किसी काम के नहीं होंगे और फेल करेंगे तो दुनिया में आगे चल नहीं पाएंगे, इसलिए किसी और ने इसका हम संभाल के रखा है। और वो एक्सपीरियंस आदमी है, उसको मालूम है, उसके ऐसे ऐसे किसी एरे गेरे को नहीं देते पेपर देखने को, जो एक्सपीरियंस आदमी है उसको देते हैं। तो भगवान सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होने वाला रिजल्ट देना मैं अपने ऊपर हाथ में रखता हूं। अब कैसा रिजल्ट किसको कब दूंगा, आप काम करते जाओ, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन और बहुत छोटी हो सकती है, देने वाला बहुत बड़ा है। इसलिए आप सिर्फ काम करने में अपनी रुचि रखो। मानो ऐसे आपके प्रश्न का उत्तर है कि मैं बेटी को ये एक्सपेक्ट करूं कि कल मानो कभी मैं बीमार हो जाऊंगी तो घर में आके मेरे को देखेगी, देखभाल करेगी, ज्यादा से ज्यादा यही है, चलो फोन करूंगी कोई नहीं होगा तो आके देख ली, इतना ना। ये आपने छोटा सोच लिया। मानो कभी ऐसी कोई अवस्था पड़े जहां आपको जरूरत पड़े और बेटी बहुत बड़ा कोई काम कर जाए जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, भगवान न करे किसी को जरूरत पड़ती है, गुर्दे की जरूरत पड़ती है, कोई नहीं देता है, बेटी का अपना खून है वो गुर्दा दे दे उस वक्त, ये तो कोई एक्सपेक्ट तो आप नहीं कर रहे हो, लेकिन वो ऐसा काम भी तो कर सकती है ना। तो आप तो बहुत छोटा सोच रहे हो, वो कुछ बहुत बड़ा कर सकता है। तो इसलिए कहने का है कि आपकी सोच जो है वो छोटी रखने से आप अंडर एस्टिमेट करते हैं किसी चीज को। इसलिए भगवान ने सिद्धांत ये दिया, कर्म अपना ठीक तरह से करो, रिजल्ट तुम अपना स्पेक्युलेट मत करो क्या होना है, जो तुम्हारे लिए अच्छा रिजल्ट होगा वो निर्धारित तुमसे बड़ा है वो करेगा। जैसे आपके पेरेंट है ना बच्चों के, उनको मालूम है बच्चों के लिए अच्छा क्या है, उनकी सारी व्यवस्था वो करते हैं ना अपनी तरफ से। अब बच्चे का तो ये है कि मेरे को कुछ घूमने जाने दे तो अच्छा है, लेकिन आप नहीं घूमने जाने देते तो रिजल्ट आपके हाथ में तब ना, कंट्रोल आप रखते हो तब ना। बच्चा तो कहीं स्कूल जाने को तैयार भी नहीं होगा, पहले दिन कुछ बजे स्कूल गए तो आपको अच्छा लगा था, रोए थे कि नहीं रोए थे स्कूल में जब गए थे, तो पहले दिन जब छोड़ के आए तो रोए थे ना, लेकिन पेरेंट छोड़ के आया था क्योंकि उनको रिजल्ट मालूम है कि स्कूल जाओगे तो आप अच्छे बनोगे। जैसे पेरेंट को मालूम है ऐसे भगवान को मालूम है कि ये काम ठीक तरह से तब करेंगे जब रिजल्ट की चिंता नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा एग्जाम के 3 आवर्स कितने हमारे लिए खतरनाक होते हैं, जैसे 3 आवर्स एग्जाम के ऊपर पहले एक ऐसे आया करता था, 3 आवर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, वो रात से बुखार चढ़ना शुरू होता है, दूसरे दिन एग्जाम हो तो रात से बुखार चढ़ना शुरू होता है, नींद रात को आती नहीं है, किताब खोलते हैं तो कुछ दिखता नहीं है, अरे ये भी नहीं पढ़ा अभी तक, अरे ये रह गया, ऐसे बाल खींचता है आदमी अपना, कितना परेशान है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये हो रहा है। हमने अननेसेसरी अपने आप को एक्साइटेड करके रखा हुआ है। और पीसफुल अगर जाके बैठोगे तो इससे ज्यादा अच्छा करोगे पेपर एंग्जाइटी से, लेकिन नहीं हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो गई है कि हम हर चीज को एक्सपेक्ट करते हैं। एक और भी रास्ता होता है, एक मैं बहुत कहानी पढ़ी थी, ये बच्चे जैसे है ना, ये बच्चा है हमारा रौनक बैठा है, ये बच्चा है कने, ये कहीं हॉस्टल में रहते हो, पढ़ने गए और महीने के बाद घर में आ गए, तो माँ बाप को तो एक्सपेक्टेशन होती है, बच्चा आ गया तो कुछ हाथ बटाएगा, अरे बेटा तुम ऐसे करो, कुछ कपड़े आयरन कर लो, मैं तो छुट्टी पे आया हूँ, कहना आप कहती है तो कर लेता हूँ, हमें ना क्या करूंगा, कपड़े आयरन कर लिए, बेटा तुम ऐसे करो लान थोड़ा काट दो मशीन चला के, हाँ माँ माँ काट ले दूंगा। लेकिन लंच के ऊपर आके बैठा तो एक बिल बना के दे दिया कि माँ आपके कपड़े 7 इस्त्री किए हैं, 10 ग्राम इसके लूंगा, और आपका लान काटा है 15 ग्राम ये, 25 ग्राम शाम को मेरे को दे देना। ये बच्चे की मन में भावना ऐसे आती है। अब माँ बुद्धिमान है, कुछ बोला नहीं, शाम को डिनर की टेबल पर बच्चा आया तो एक चिट्ठा लिखा, बड़ा चिट्ठी लिख के रखा, बेटा तुम्हारे कपड़े रोज मैं धोती हूँ मुफ्त में, खाना मैं तेरा रोज बनाती हूँ मुफ्त में, तेरी पढ़ाई के लिए सारा प्रबंध करती हूँ मुफ्त में। नीचे लिखा, बेटा पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। तो प्रेम से काम ज्यादा हो रहा है कि पैसे से काम ज्यादा हो रहा है? तो बच्चे के दिमाग में आ गया कि अरे ये प्रेम से इतना कर रही है और मैं इतना छोटा सा किया, इसका भी कुछ फल मांग रहा हूँ जी। इसके ऊपर तो मेरे को हंसी आती है, अभी हंसी की बात बताऊंगा फिर आपको। ये बेचारी माँ ने कहा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लड़के की शादी करा लूंगी, बहू आ जाएगी, हाथ बटा लेगी, काम होगा। बहू आई तो 9 बजे उठने वाली थी और घर में 7 बजे से काम शुरू होता था। माँ उठ के बेचारी झाड़ू निकाली, अब बेटा कहता माँ तुम बूढ़ी हो गई है, मैं निकालता हूँ। माँ बोलते नहीं बेटा मैं निकालूंगी। वो सोई हुई कहती है, झगड़ा काहे का है? बोलता ये माँ कहती है मैं निकालूंगी, नहीं मेरे को निकालने। वो कहती एक दिन वो निकाले, एक दिन वो निकाले, मेरी नींद मत खराब करो। जो सुख के लाए लिए थे वो सुख। लेकिन ये सोचना नहीं चाहिए। बात ये कर रहे थे, कृष्ण कहते हैं कर्मण एव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारी फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है फल मिलेगा नहीं, फल मिलेगा, लेकिन तेरी एक्सपेक्टेशन की वजह से तुम चिंता मत करो। आपने देखा है बच्चे, आपको एग्जाम का लास्ट पेपर खत्म होता है कैसा लगता है? सारा वजन उतर गया दिमाग से, छुट्टी परेशानी खत्म, ऐसे ना? क्यों? अब परेशानी मास्टर की शुरू हुई। आपने 3 घंटे लिखा और वो सारे 50 पेपरों का बैठ के देखेगा तो परेशानी उसकी ज्यादा है कि तुम्हारी ज्यादा है? एग्जाम खत्म हुआ बड़ा खुश हो जाता है स्टूडेंट, तो हमारे को कम पूरा करके खुश होना चाहिए ना। हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं, हमको खुश होना चाहिए ना इसके ऊपर कि हमारा तो परीक्षा है, हम दे रहे हैं रिजल्ट, तो मेरे ऊपर मेरे को नहीं लेना है। मां फलेषु कदाचन, फल एशु प्लूरल में है, ये बहुवचन में फलेषु, और ईशु का एक अर्थ होता है बाण। ईशु भी प्रत्युतस्यामि पूजाराव अरिसूदन, ईशु मतलब बाण, बाण जो लगते हैं उसमें बहुत दर्द होता है। तुम ये फल की चिंता करोगे तो तेरे को हर वक्त बाण लगते रहेंगे। यू विल ऑलवेज हैव दी शार्प एरोज पियर्सिंग योर कॉन्शियसनेस। तो इन ईशु के से बचो तो क्या काम नहीं करे? मां फलेषु कदाचन के बाद भगवान ने 2 और बातें कह दिए, मां कर्म फल भूर हेतु। तुम अपने आप को कर्म के हेतु मत समझो कि तुम बच्चे का पालन करोगे तो होगा, तुम नहीं होगे तो इसका बहुत बड़ा अनहित हो जाएगा, ऐसे मत सोचो। तुम नहीं, जिसकी माता जन्म देते ही संसार से चली जाती है वो भी बच्चा इस जन्म में दुनिया में जीता, तो कर्म के तुम हेतु मत बनोगे। तुम हो तो कम चल रहा है, ये इसकी वजह से भी एक दुनिया में बहुत बड़ा झमेला है। मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? बोले तुम नहीं होते, ये बहुत जिनको परेशानी है उसको 1 महीना छुट्टी लेके घर से जाना चाहिए कि घर चलता है कि नहीं चलता है, वापस आएगा तो और अच्छा चलता है। हम समझे, हम जाएंगे तो घर चलेगा नहीं,
आप बच्चों को देख के देखो तो इससे अच्छा चला लेंगे, कोई परेशान नहीं है। हमने देखा, हम घरवाली को पैसा दे के जाते थे तो उनको 10,000 रुपया घर चलाने का जाए, वो हम चले गए बच्चों को 3,000 रुपया दिया महीने में चला देते, तो बच्चे ठीक चला रहे थे ना। तो इससे अर्थ क्या निकला कि तुम कर्म के हेतु मत अपने आप को समझो कि मैं कर्म का हेतु हूं, ये बात ठीक नहीं है। तुम्हारे होने से ही काम होगा ये ठीक नहीं है। तुम हो तो अपना फर्ज जरूर पूरा करो। यू आर देयर, यू जस्ट परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। काम करने में कोई परेशानी नहीं है, उसमें अटैचमेंट जो मैं करता हूं तब होता है। और ये मैं वाला बीमारी जो है ये हमको इशू, ये तुम्हारे को हमेशा दुख देती रहती है। मां कर्म फल भूर हेतु, कर्म का हेतु अपने आप को मत समझो। आप ऐसे कोई भी काम करते हैं, आप मानो समझो कि अभी ये गिलास एक पानी का मेरे को दे दिया ना आपने करिश्मा, अब ये आप कहो कि मैंने पानी दिया, लेकिन पानी तो आपने नहीं बनाया ना, गिलास भी आपने नहीं बनाई ना, कितने लोगों ने इसमें काम किया। अब आया कहां से, स्टील आया, किस कंपनी ने गिलास बनाई, कहां से बाजार में आई, पानी कहां से प्योरीफाई समुद्र का हुआ, हजार और आदमियों ने इसमें हेतु है, आप अकेली हेतु तो नहीं है ना। आप कहेंगे मैं ही हेतु हूं तो गलत हो गया ना, इसमें हजार और लोग हेतु हैं। तो आप अपने आप को हेतु किसी काम का मत समझो, ये बहुत प्रैक्टिकल है कि मां कर्म फल भूर हेतु। तो क्या मैं, मुझे फल भी मैं इच्छा न करूं, ये भी न कहूं कि मैं काम कर रहा हूं तो मैं काम ही नहीं करता हूं। तो तीसरी बात भगवान कहते हैं, न असंगो कर्मणैव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल भूर हेतुर माते असंगो। असंग भी मत बनो, काम नहीं करूंगा ये भी ठीक नहीं है। तुम काम नहीं करोगे तो तुम जिम्मेवार हो जाओगे तुम्हारे ड्यूटी के निगलेक्ट के, तुमने अपनी ड्यूटी निगलेक्ट की है। तुम्हारे ऊपर ड्यूटी निर्धारित थी ना, तुम्हें तो वो करना है, तुम छोड़ नहीं सकते उसको। कर्म छोड़ना तेरा अधिकार है ही नहीं। असंग वास्तव, तुम असंग मत बनोगे मैं कुछ भी नहीं करूंगा, ये तुम्हारे को करने का अधिकार नहीं है, तुम उस दर्जे के ऊपर नहीं हो। अगर तुमने शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, तो पालना तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा धर्म है, तुम इसको छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन तुम बच्चों को समझो कि भगवान ने ये मेरे को जवाबदारी दी है कि इनको अच्छा बना के पढ़ा के लिखा के अच्छा आदमी बना के समाज को देना, भगवान को इसको तैयार करके देना है, मेरे ऊपर ये दायित्व दिया गया है, ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है, मैंने शादी की है तो मेरी जिम्मेवारी है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। मैं छोड़ूंगा तो मैं फिर पाप का भागी बन जाऊंगा। If you give up your responsibility, still you are incurring sin. तो फिर पाप हो जाएगा। तो का पाप का कर्म करने को छोड़ना नहीं है, कर्म का हेतु बनना नहीं है, और कर्म के फल की चिंता करनी नहीं। ये तीन बातें अगर जीवन में समझ में आ जाए तो आदमी बहुत सुखी रह सकता है। लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि कर्म अपना ठीक तरह से करना है, क्योंकि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर्म नहीं कर रहे हैं। हम हैं क्या पहले ये समझ में आएगा ना, पहले ये समझ में तो आएगा हम हैं क्या, किसके लिए कर्म कर रहे हैं, तब समझ में आएगा ना। हम कंपोजाइट हैं, हम दो चीजों का मिश्रण है, और ऐसा मिश्रण हो गया है कि वो अलग हो नहीं सकती। एक तो जीवन का तत्व आत्मा है, और एक शरीर है जो प्रकृति ने दिया है, और आत्मा है जो भगवान का अंश है। ये दो आपस में मिल गए हैं। हरे कृष्ण। आत्मा भगवान का अंश है, ममैव अंश जीव लोके, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जीव मेरा अंश है। शरीर प्रकृति ने दिया है, उसको करने दो, बोलने दो। या अरे कृष्ण बोलो बच्चे लोग, लेट देम प्ले, इट्स नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये हम उस दिन घर में बैठे थे, किसी के छोटे बच्चे थे, बार बार कहते चुप करो। हमने कहा इससे आपको एक बात सीखना चाहिए कि ये शोर करते रहेंगे, आपको अपना काम करना है। आप समझोगे ये शोर बंद करेंगे फिर आप काम करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। एक आदमी नहाने जा रहा था समुन्द्र में,
सुबह हमको 8 बजे मिला, कहाँ जा रहे समुद्र पर, नाम शाम को 5 बजे हम वापस आए लौट के काम से, अभी गमछा रख के बैठा, अरे भाई नाया नहीं, बोला ये वेव आ रही है खत्म होगी फिर नहाऊंगा। अरे मूर्ख, वेव कभी खत्म होती है समुद्र में? नहाना है तो जाके डुबकी लगा लो। हम कहे नहीं, ये जब सब शांत हो जाएगा फिर हम भगवान का भजन करेंगे। अरे भाई ये कभी शांत नहीं होगा, ये तो ऐसे ही उबलता रहेगा, उसके बीच में बैठ के करना है। बच्चे चुप हो जाएंगे फिर भक्ति करेंगे? नहीं, बच्चे बोलते रहेंगे, परेशानियां आती रहेंगी, ये रिसेशन आता रहेगा, बूम आता रहेगा, उसके बीच में आपको बैठ के काम करना है। ये कंडीशन आपके, ये तो ऐसे ही चलेंगे, तो समुद्र की लहरें रुक नहीं सकती हैं। इस दुनिया में अप्स एंड डाउन आए, फिर भी आपको अपने काम को छोड़ना नहीं है, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ये सत्संग से सीखना है आपको। नो डिस्ट्रैक्शन अंडर ऑल आर्ड सर्कमस्टेंसेस, उसको टॉलरेट करना। ये टॉलरेंस पावर जो है ये यहां सीखने के लिए आते हैं कि ये सब होगा फिर भी हम उसके बीच में, इसको कहते हैं पदम पत्रम इवाम भसा। भगवद गीता में ये श्लोक है, कमल का पत्ता जैसे जल के अंदर होते हुए भी जल से भीगता नहीं है, ऐसे इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी अपने काम को करो लेकिन अपने आप को भिगाओ मत। देखे कभी आपने हाथ से देखा है, आंखों से कमल का पत्ते के ऊपर पानी डालोगे ना तो जैसे जैसे मर्क्यूरी जाती है ना ऐसे दूर भाग जाएगा। आपने कभी किया एक्सपेरिमेंट? कभी देखना, पता नहीं क्या एक उसके ऊपर ग्लिसरिंग, एक ग्लिसनिंग कोई लेयर ऐसी भगवान ने चढ़ा के रखी है कि उसके ऊपर पानी ठहर ही नहीं सकता है, अपने आप गिर जाएगा। पैदा पानी में होता है, पड़ा पानी में, लेकिन पानी उसके ऊपर ठहरता ही नहीं। तो जीवन को ऐसे जीना है, पानी में ही तो खड़ा है ना, पानी से बाहर तो नहीं जा रहा है, तो घर में रहना है, घर छोड़ के नहीं जाना है। कभी महात्मा लोग नहीं, घर छोड़ेंगे तो भक्ति होगी। अरे घर छोड़ेंगे तो भक्ति कैसे, घर बनाया है तो छोड़ोगे तो भक्ति कैसे होगी? तो तुम्हारा मन तो तुम्हारे साथ जाएगा ना, तो घर तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं जाता, तुम काम पे जाते हो घर तुम्हारे साथ थोड़ी जाता है, तेरा मन जाता है ना, परेशानी तुम अपने साथ ले जाते हो, तो मन कहां छोड़ के जाओगे? तो ये संभव नहीं है कि घर छोड़ेंगे तो भक्ति होगी, ये संभव नहीं है। जो घर में रह के भक्ति नहीं कर सकता है वो घर से बाहर रह के भी नहीं करेगा, तुम्हारा मन तो तुम्हारे साथ ही जा रहा है ना। तो ऐसी परिस्थितियों के बीच में अपने आप को स्थिर कैसे रखा जाए? आपके प्रश्न में यही है कि कर्म करने का आपको अधिकार है और उसको ठीक तरह करना चाहिए, और अपना समझ के नहीं, अपना जिम्मेवारी समझ के करना चाहिए। आपने कभी देखा है कोई बहुत, उदाहरण कैसे दिया जाए, अपनी चीज का भी कभी हम इतना ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन किसी और की चीज हमारे पास है तो उसका बड़ा ध्यान करते हैं कि कुछ हो गया तो अच्छी बात नहीं है। यानी नेचर में एक हमारा नेचर ऐसा है, भाई पराए, तो उस चीज के लिए हम बहुत सावधान है, उसको इसको कहा जाए कि कोई हमारे पास कोई चीज रख के जाता है तो उसको तो हम ठीक संभाल के रखते हैं, अपनी चीज के लिए इतना ध्यान नहीं रखते। तो सीखना यह कि इस दुनिया में हमारी चीज तो कोई थी नहीं, हमारे पास तो सब कुछ अमानत है, बच्चे हैं तो भी भगवान की अमानत है, उसने दिए हैं, तो अमानत को ठीक तरह संभाल के रखना चाहिए ना। जब मांगेगा तो ले भी सकता है, तो उसके हैं, हमारे तो नहीं है। ये दिमाग में बात समझ में आ जाएगी तो हम उसका बहुत ज्यादा केयर करेंगे, भाई किसका है ये पता लग जाए ना। और मानो कि अभी यहां का शेख आपकी स्कूल और शेख साहब यहां का आपके पास बच्चा पढ़ने को भेजे तो आप कितने सावधानी से उसको देखभाल करोगे? हमें जैसे एक साइकोलॉजी आपकी कैसे हो जाएगी, तो भाई प्राइम मिनिस्टर का मानो बच्चा आ रहा है कि मिनिस्टर का बच्चा आ रहा है, तो टीचर इज कॉन्शियस ऑल द टाइम। जब भगवान ने एक बच्चा आपको दे दिया है तो वो क्या इन सबसे छोटा है क्या? तो उसको कितनी सावधानी से आपको पालना चाहिए, तो उसकी तरफ से ये आपको एक मिला है तो उसको, तो बात हम कर रहे थे कि पहले ये समझना चाहिए कि हम हैं क्या। तो हम तो कंपोजाइट हैं, एक बहुत एक ऐसा मिश्रित है जो अलग किया नहीं जा सकता है। आत्मा भगवान का अंश है और शरीर प्रकृति ने दिया है। जैसे संसार में भी मां सारे शरीर को बनाती है बच्चे को, पिता से केवल बीज मिलता है, तो बीज पिता देता है, आत्मा भगवान से आता है, पूरा शरीर प्रकृति बनाती है। इसलिए हमारे दो काम हो गए, आत्मा के नाते हम अपने बाप की तरफ झुका होना चाहिए, और प्रकृति ने शरीर दिया है इसके नाते हमको इस संसार के अंदर कुछ काम करना चाहिए। तो हमारे दो काम हो गए, क्योंकि हम डबल हैं, सिंगल नहीं है। आत्मा निकल जाए तो शरीर किसी काम का नहीं है, और शरीर नहीं है तो आत्मा का पता ही नहीं है कि है कि नहीं है। तो दोनों साथ हैं तभी काम चल रहा है, और दोनों का झुकाव अलग जगह पे। अब इसको बैलेंस करना है, आत्मा के लिए तभी सुखी हो सकती है, आत्मा को तभी आनंद आएगा जब वो भगवान का चिंतन करेगा, और शरीर तब सुखी हो सकता है जब वो प्रकृति के साथ नेम से चलेगा। ये प्रकृति चला रही है ना संसार को, तो इस प्रकृति का नेम है सुबह सवेरे उठना है, मानो टाइम से खाना है, ये प्रकृति का नेम है। जो अपना कर्म है वो करना है, ये प्रकृति का नेम, वो करेंगे तो शरीर ठीक रहेगा। तो ये दोनों को बैलेंस नहीं करेंगे तो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी, तो ये दोनों को ठीक चलाएंगे। तो इसलिए प्रकृति ने आपको, जो आपका दायित्व आपका कर्म है वो प्रकृति की तरह, ये शरीर के ऊपर दायित्व है सारे, इसको पूरे करने हैं, लेकिन मालिक भगवान है प्रकृति का, उसने इसलिए शास्त्र में आपके कर्म निर्धारित किए। इसलिए एक शब्द आता है भगवद गीता में स्वधर्म, स्वधर्म मतलब अपना धर्म। अपने धर्म के दो अर्थ हैं, एक स्वधर्म है आत्मा का, एक स्वधर्म आत्मा का है वो सबके लिए सामान्य है, आत्मा तो सबकी एक ही भगवान का अंश है, उसका धर्म तो सामान्य है। बेबी वेरी गुड, म्यूजिक बजेगा तो कीर्तन होगा। तो स्वधर्म आत्मा का जो होता है वो सबके लिए सामान्य है, लेकिन शरीर का स्वधर्म अलग होता है। स्त्री का धर्म अलग हो गया, पुरुष का धर्म अलग हो गया, ब्राह्मण का धर्म अलग हो गया, क्षत्रिय का धर्म अलग हो गया, अलग हो गया। लेबर का धर्म अलग है और इंजीनियर का धर्म अलग है, काम अलग है। तो शरीर का धर्म अलग है और सबका आदमी का अलग अलग होता है। स्टूडेंट का धर्म पढ़ना है, इसको केवल पढ़ाई करनी, मानो मैंने जो काम लिया है मेरा धर्म है सिखाना, पढ़ाना, लोगों का मार्गदर्शन करना। मैं आप किसी और का धर्म, माता जी का, अब हम इसके घर में आए तो इस घर वालों का धर्म है, कोई आया उसको पानी पिलाना, ये इनका धर्म हो गया। तो हर एक शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का सबका धर्म समान है। तो भगवत गीता में भगवान दोनों धर्मों का वर्णन करते हैं। अर्जुन को कहते तुम्हारा शरीर का धर्म क्षत्रिय का है, और क्षत्रिय का काम होता है धर्म युद्ध करना, तो तुम अपने कर्म को ठीक तरह से करो, लेकिन करो तो ठीक तरह से, लेकिन इसमें तुम हेतु पर मत बनना, फल की इच्छा भी मत करना कि तुम्हारे कोई युद्ध में हार होगी या जीत होगी, लाभ होगा या हानि होगा, ये मत सोचना। लाभ अलाभ हो, जय जय हो, जय अजय, इसको मत सोचना। ये सोचोगे तो तुम काम ठीक कर नहीं पाओगे। तुम्हें काम करना है तो सिर्फ काम के ऊपर फोकस करो, बस काम ही करना है। क्या इसका रिजल्ट आएगा ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या मुझे लाभ होगा, नहीं लाभ होगा तो काम होगा नहीं। एक हंसी की बात आती है, एक टीचर पढ़ा रहा था प्राइवेट स्कूल में, एक सर्किल निकाल रहा था, उसमें पढ़ा रहा था फाइंड द किंटर ऑफ ए गिवन सर्कल। तो किसी ने कहा तुम क्या पढ़ाया, लिखा तो है फाइंड द सेंटर ऑफ ए गिवन सर्कल। वो कि मैं जानता हूं तनख्वाह 300 रुपया देता है, क्या मैं सही पढ़ाऊं? तनखाई 300 रुपया देते हैं तो काय के लिए सही पढ़ाऊं? तो इसका मतलब उसने फल देख लिया ना, कि 300 रुपया देते हैं हम काय के लिए ठीक पढ़ाए। भाई ये 3000 तनख्वाह दे तो ठीक तरह से पढ़ाएंगे, नहीं तो सही पढ़ा लेंगे। तो फल की इच्छा हुई तो काम ठीक नहीं हुआ ना, पहले से सोच लिया कि ये भाई कम पढ़ाया, कम खर्चा दे रहा है तो कम काम करेंगे। ये तो पंडित जी अभी ऐसे हो गए हैं, वो जाएंगे कोई हरिद्वार में लेके अस्थियां, तो बोले तुम्हारे पिताजी का तुम्हारे को कराना है, कौन सा वाला कराना है, 500 वाला कराओगे 1100 वाला कराएंगे? क्यों भाई क्यों 500 वाले में, जहाज में पिताजी को भेजोगे यहां से, तुम तो गंगा में था, तुमको अस्थियां डाल, फिर 500 वाला कौन सा है और 1100 वाला कौन सा है, हाँ कि 125 वाला कराऊं, कौन सा महाराज कराऊं आप? तो ये क्या है कि कॉन्शियसनेस फल के ऊपर फोकस होगी तो काम कोई ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए भगवान कहते काम को काम समझ के करो।
डू वर्क एज ड्यूटी, काम को काम समझो, बस आपका काम ही करना है। कई बार लोग ये पूछते हैं कि भाई काम में हम इतने थक जाते हैं रोज, तो एक 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 पैथोलॉजी लेबोरेटरी के टेक्नीशियन से पूछा तुम्हें रोज कितना टेस्ट करना है खून, बोला 100 एक आता है रोज मानो पेशेंट, बोला तुम तकलीफ नहीं होती है, बोला मैं जो एक मेरे हाथ में उस एक को ही देखता हूं, इसी को ही ठीक करना हूं, जब वो खत्म होगा तब दूसरे को हाथ लगाऊ, मैं देखता ही नहीं कि दूसरा कहां है, मैं बाहर जाके 100 देखूंगा तो मैं कहूं 10 बना जल्दी निकाल के खत्म करूंगा, लेकिन आई फोकस ओनली ऑन वन व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ मी। तो आप परफेक्ट जीवन को बिता सकते हो, कि अभी इस वक्त मेरे पास क्या है उसको ठीक कैसे करना है। तो कर्म को सिर्फ कर्म समझ के करना चाहिए, उसके बदले में हमको क्या मिलना चाहिए ये सोचेंगे, ज्यादा मिलेगा तो अच्छा करेंगे और कम मिलेगा तो कम करेंगे, तो इसका मतलब हम अपनी कैपेबिलिटी पूरी तरह से सही यूज नहीं कर पाएंगे। तो भगवत गीता की शिक्षा है कर्म को कर्म समझ के करो, और जो अच्छी तरह से कर्म करेगा उसका तो फल अच्छा अपने आप मिलेगा ही ना। कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात किम गच्छति, भगवान आगे कहते हैं अरे अच्छा काम करने वाले का कभी अहित हो ही नहीं सकता, उसका तो नुकसान हो ही नहीं सकता है। तो आप अगर बच्चों को अच्छी तरह से पालोगे तो बच्चे आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, आप एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं उससे ज्यादा, मैं जैसे आपको कहा ना कि गुर्दा देने की जरूरत पड़ी तो भी दे देंगे, लेकिन अगर आप ठीक तरह से पालन नहीं करोगे तो बहुत बड़ा कष्ट भी हो सकता है जीवन में आपके सामने आ जाए। लेकिन दोनों से आप अलग होके सिर्फ अपना फर्ज समझे कि उसको पूरा करोगे तो आपका कम और ज्यादा काम परफेक्ट होगा। कर्मणेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल भूरेतुर मा ते संगो अस्तव अकर्मणि, न काम करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं काम करूंगा ये भी ठीक नहीं, काम निश्चित रूप से करना है। तो कुछ काम आत्मा के हैं और कुछ काम शरीर के हैं, हमको इन दोनों का बैलेंस करना चाहिए तो जिंदगी हमारी संतुलित रहेगी, बैलेंस रहेगी। हो क्या गया है दुनिया में, सारे शरीर के कामों के ऊपर तो हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है और उसको भी हमने लाभ और हानि के आधार के ऊपर ध्यान दिया है, आत्मा के काम को हमने निग्लेक्ट कर दिया कंप्लीटली। अल्टीमेटली शक्ति तो आत्मा से आती है तब काम होता है ना, तो जिसको निग्लेक्ट किया है उसकी शक्ति ऑटोमेटिकली क्लीन होती जाती है, इसलिए हम काम करने के बावजूद के उपरांत भी संतुष्ट नहीं होते हैं, बावजूद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी हम कंटेंट नहीं है, क्योंकि हमने जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको इग्नोर कर दिया। तो बैलेंस जीवन जीना चाहिए। भगवान भगवत गीता में कहते हैं मैं आपको फिनोमिनल नॉमिनल दोनों वर्ड का, कि इस दुनिया का और दुनिया से दूर दोनों का ज्ञान विज्ञान देता हूं, एक बात नहीं कहते दोनों की बात करते हैं। ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, आपको दोनों बातें बता रहा हूं कि दुनिया में कैसे जीना यह भी बता रहा हूं और दुनिया से काम खत्म हो जाएगा तब तुमको कहां आना है यह भी बताता हूं। तो शरीर प्रकृति ने दिया है इसलिए शरीर के ऊपर दायित्व है, संसार के अंदर आपकी जवाबदारी का, बेटे हो तो बेटे का फर्ज पूरा करना है, पिता हो तो पिता का करना है, भाई हो तो भाई का करना है, माँ हो तो माई का करना है, ये आपको फर्ज अपने पूरे, क्योंकि शरीर तुम प्रकृति से लिया है, और फिर समाज का करना है भाई, केवल घर नहीं, आपके घर के साथ तो बहुत से लोग और जुड़े हुए हैं, पूरा समाज जुड़ा हुआ है, देश पूरा जुड़ा हुआ है, तो उन सबके साथ भी दायित्व है ना आपका, तो वो सब भी तो ठीक तरह से करना है। लेकिन आत्मा के नाते भगवान से आपका रिश्ता है उसको भी भूलना नहीं है, तो दोनों को बैलेंस करके काम करेंगे तो हमारे एक माता जी थी, उसका बेटा बीमार था, एक महीना डॉक्टर इलाज करने के लिए रात को रोज आया, जब बेटा बिल्कुल ठीक हो गया तो माता जी ने एक हाथ का बहुत सुंदर बनाया हुआ पर्स, उसके अंदर कुछ नोट डाले और डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब आपको ये हमने हाथों से बहुत अच्छा ये बैग बनाया है, ये हम आपको भेंट कर रहे हैं, आपने हमारे बच्चे का जीवन बचाया है। डॉक्टर ने बैग को देखा, ऐसे बच्चे को देखा, माँ को देखा, बोला माँ एक महीने का मेरे आने का फी 10,000 रुपया होता है, तो भेंट आपकी ठीक है लेकिन फी मेरी। माता ने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर से बैग लिया, बैग का चेन खोला,
और अंदर 1,00,000 रुपया पड़े थे, उसमें से 10,000 गिन के डॉक्टर को दे दिया। तो मांग के उसने अपना आहित कर दिया ना, तो भगवान पता नहीं क्या देना चाहते हैं बैग में, आपको मालूम नहीं है। आप कुछ छोटा सा मांग के अपना आहित कर देते हो, तो इसलिए फल उसके ऊपर छोड़ोगे तो हमेशा आपको लाभ होगा बहुत। वो तो जैसे अभी मानो के एक गरीब की बेटी है, वो शादी करेगा तो बेचारा अपने हिसाब से करेगा ना। मानो के अगर कोई सेठ पड़ोस में बैठा है, बोला इस लड़की को मैं शादी कराता हूं, तो वो तो अपने स्टैंडर्ड से कराएगा ना। वो फिर करेगा तो अपने नाम से, अपने आदमी, अपने मित्र बुलाएगा तो अपने स्टैंडर्ड से कराएगा ना। तो जब भगवान के हवाले किया तो भगवान तो अपने स्टैंडर्ड का फल देगा ना, वो हमारे बुद्धि से थोड़ी सोचेगा, तो अपनी बुद्धि से सोचे, तो भगवान अपने हिसाब से सोचेगा ना। तो कैसे भगवान फल देता है ये तो वो जाने, हमें अपना काम ठीक कर देना है। बाकी जो आपका प्रश्न है उसमें ये है कि समाज में रहना है तो हमारे को हरेक के उत्सव में भाग लेने में कोई आपत्ति नहीं है। उत्सव का अर्थ होता है कि थोड़ी देर के लिए आपका सांस ऊपर उठ जाता है, मतलब खुशी होती है। उत्सव, उत्सव मतलब खुशी होती है। तो किसी दूसरे की खुशी में खुश होना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। चाहे धार्मिक फंक्शन हो, चाहे सोशल हो, अगर दूसरे की खुशी में जाके खुश होते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ जीवन के प्रिंसिपल है, उसका सौदा नहीं किया जाता है। जीवन के कुछ नियम और उसूल होते हैं, वो तो अपने रहने। अब जीसस क्राइस्ट एक धर्म का गुरु था, तो उसका सम्मान हम भी करें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो धर्म गुरु था। अब हम जैसे अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं ऐसे उसको किया, तो कोई इसमें आपत्ति नहीं है। और उसने अच्छा ही बात दुनिया को बताई है, तो उसको सम्मान करने में कोई खराबी नहीं। अथवा हमारा पड़ोसी दूसरा कोई और किसी मजहब का है, धर्म का है, उसका कोई उत्सव है, तो उसके उत्सव में उसको कोई गिफ्ट देना या लेना, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अपना भी तो कोई धर्म जीवन में बना के रखना चाहिए ना, वो अपना भी तो कुछ होना चाहिए ना जीवन में। तो जब उधर जाओगे तो अपना भी तो कोई आपका उत्सव होना चाहिए ना। तो ये वो दूसरा फिर एक देखना, ये क्या वन वे ट्रैफिक तो नहीं है? प्राय हमने एक अनुभव किया है, हम सिंध में रहे तो हमने देखा बहुत से हिंदू सूफियों के पास जाते हैं, सूफी संतों के पास, मुसलमान सूफी होते हैं उनके पास जाते हैं। लेकिन मैंने वन वे ट्रैफिक केवल देखी कि हम उधर जाते हैं, लेकिन वो कभी हमारे मंदिर में आए ये हमने नहीं देखा है, वो कभी हमारे मंदिर में आए ये हमने नहीं देखा है। तो इसके लिए देखो, ये आप जो कर रहे हैं ये सोशल जो रिलेशन कर रहे हैं ये कर रहे हैं फ्रेंडशिप की बुनियाद पे। तो फ्रेंडशिप तो ये है कि आप आओगे तो मैं आऊंगा, तो ये दूसरा जो एस्पेक्ट है इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ वन वे ट्रैफिक होनी चाहिए कि हमारे उत्सव में वो नहीं आए और हम केवल उत्सव में जाए, ये तो ठीक नहीं लग रहा। तो ये म्यूचुअली इक्वल बेसिस पे करो तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मानो मैं एक हैप्पी मैरी कहने के लिए जाता हूँ, हैप्पी क्रिसमस कहने के जाता हूँ, तो दिवाली के दिन वो आके भी हमारे को हरि नाम कहे, राम राम करे, तो ठीक है। लेकिन वन में सिर्फ बच्चों को भाई उसी उत्सव में जाएंगे और वो हमारे पास नहीं आएंगे, तो हमको भी थोड़ा सा सेफ गार्ड अपना करना चाहिए कि वो ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी चीज को भूल रहे हैं। ये तो ऐसे किया था किसी जमाने में ब्रिटिश शासन में, उन्होंने ये कहना हमको सीख दिया कि आपका सब पुराना रीति रस्म बेकार है, हमारे पास नया है, आपको ये अपनाना चाहिए। तो एक ब्राह्मण था बेचारा, गाय ले जा रहा था, तो तीन बदमाश रास्ते में फैसला कर गया कि इससे गाय कैसे लेंगे, बोला क्या करेंगे। पहला गया बोला महाराज बहुत राम राम, ये गधा तो बड़ा अच्छा है, कहां से लाए भाई? गधा है, अरे गाय है ना, अभी तो दूध निकाल के आया हूं। महाराज आपकी मर्जी, लगता तो गधा है, चला गया। महाराज आगे गया, दूसरा आया बोला महाराज गधे का रंग तो बहुत अच्छा है, बड़ा, अरे गधा कैसे है, गाय है ना। महाराज देखो गधा है, अरे गधा का नहीं है ना, तो आपकी मर्जी महाराज। तीसरा आया बोला महाराज गधा कितने में बेचोगे? अब महाराज ने कहा ये सचमुच गधा तो नहीं है कहीं, गधा तो कहीं नहीं है। तो ऐसे करके थोड़ी देर के लिए बैठा सोचे, तब तक वो गाय लेके चला गया, वो गाय ही ले गया। तो इन्होंने हमारा ये हाल किया, हमारे को अरे तुम्हारा बेकार है, वो मूर्ति को उधर पूजा करते हैं, क्या जरूरत है उसको करने की।
देखो आपका ये तो, ये तो हमारा गाय को गधा बन के वो गाय ले जा रहे, ये काम तो मत करने दो ना। तो जस्ट बी एट गार्ड। कैसे तो नहीं है कि आपकी वैल्यूज को डिमोरलाइज करना चाहता है कोई, यू हैव टू सेफ गार्ड ऑल्सो दैट साइड। उनसे हम ईर्ष्या नहीं करते हैं, उनसे उनको हम बुरा भला भी नहीं कहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, ये तो हमारा अधिकार है ना। हमें कम से कम अपने बच्चों को इम्यूनाइज कर देना चाहिए कि बेटा हम सनातन धर्म के हैं, हमारे रामायण भागवत महाभारत ये शास्त्र हैं, रामकृष्ण हमारे पूजने देव हैं, अनेक देवी देवताएं भगवान के भक्त हैं जो इस दुनिया का संचालन चलाते हैं, जैसे मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री की काबीना के अंदर अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं, जो भगवान को जो राजा के पास जाता है उसको फिर मंत्री के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर भगवान की भक्ति करती हो तो फिर देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, बाकी आपको जाना है तो सबके पास घूम फिर के आना, लेकिन ये निश्चित रखना कि अपना घर में निका नेम ये, इतना आप उनको सिखा सकते हैं तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है, गांधी बेचारा रोता था, कहता था देखिए हमने देखा है छोटा बच्चा मुसलमान का बहुत अच्छी तरह से कुरान हाफिज बन जाता है, पढ़ता है, 5 साल से लेकर उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ईसाई के बच्चे को बाइबल पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे लोग अपने बच्चे को गीता नहीं पढ़ाते हैं। इसलिए गांधी रोते थे कि ये बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। जब दूसरे अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमारे बच्चों को हम गीता क्यों नहीं पढ़ाते, तो ये उनको दुख होता था। वो उनके अपने क्योंकि एक वो सोशल लीडर था और धर्म से भी जुड़ा था, तो उसको इस बात से कंपेरियन करने से बड़ा दुख होता था कि हमारे बच्चे गीता का अध्ययन क्यों नहीं करते। तो कैसे भी हमको अपने बच्चों को भी गीता का अध्ययन इस दृष्टि से करना चाहिए कि जैसे टीका लगाना बच्चों को जरूरी है ताकि बीमारी न लग जाए, ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से गीता आदि की शिक्षा बच्चों को दी जाए ताकि इनको कोई बुरे संस्कार इसके अंदर बुरे विकार ना आ जाए, अपने आप को सुरक्षित समझे कि भाई कैसी परिस्थिति में अपने आप को कैसे बचाए। तो इसको ऐसे ऐसे मेडिसिन समझ के भी अगर कोई लेगा तो उसमें आपत्ति नहीं है, इट इज नेसेसिटी। और ये हमारा दायित्व है पेरेंट्स का कि हम उसका सेफगार्ड, जैसे बच्चों के हम इम्यूनाइजेशन के लिए कॉन्शियस होते हैं, ऐसे बच्चों की स्पिरिचुअल इम्यूनाइजेशन के लिए भी हमको कॉन्शियस रहना चाहिए। फिर नहीं तो फिर हमको बहुत दुख होता है जब कोई बच्चे ऐसा कोई काम कर गुजरते हैं जिसके लिए हमको फिर सर नीचे करना पड़ता है। तो हमको पहले से उन बच्चों को बिल्कुल कि आपका जीवन बेटा ऐसा होना चाहिए, पवित्रता क्या होती है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, बड़ों का रिस्पेक्ट क्या होता है, तो ये हमको पहले उनको सिखाना चाहिए। भगवद गीता पढ़ेगा तो 17वें अध्याय में आते हुए बच्चा समझेगा कि माता पिता की, ब्राह्मण की, बड़ों की, भगवान की पूजा करना, शरीर की तपस्या ना चाहते हुए करना चाहिए। रोज सुबह घर में उठ के बाहर काम से जाने से पहले माता पिता का चरण स्पर्श करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, ये तो सीख लेगा ना, तो उसको ये संस्कार आ जाएंगे ना। हर माँ बाप बच्चा जब पांव पड़ता है तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, फिर दिल में कितना आपके एक अमेरिका से मेरा दोस्त बैठा था, उसका अपना बेटा आया, वो तो सीधा आके हेलो डैडी करके ऐसे बैठ गया, लेकिन दूसरा एक बॉम्बे का उसका दोस्त है, उसके बेटे ने पांव छुए तो आंखों से आंसू आए कि मेरा अपना बेटा जिसके नाम मैंने ये 1 करोड़ रुपए की कोठी की है यहाँ और उसके वो कारोबार सब उसको दिया है, वो तो मेरा चरण स्पर्श नहीं किया, ये दूसरा मेरा मित्र है, इसका बेटा संस्कार है तो यहाँ रह रहा है, तो उसने मेरा तो वो अपना फील कह रहा है। केरल का था, उसके मंदिर के उद्घाटन में हम गए थे तो आंखों से बोल रहे थे अपने बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्या करें, नहीं कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार तुम हो, तुमने अपने बच्चों, एक मेरा मित्र डॉक्टर मुझसे मिलने आया और अपने बेटे को कह रहा था, मेरे नाम बोलता था, डॉक्टर साहब के पांव छुआ, मैंने कहा ये नहीं छुएगा, बोला क्यों, मैंने कहा पहले तुम तेरे बाप के छुओ तब ये तेरे छुएगा ना, तुम तो खुद करते नहीं हो। हमने कई बार देखा है बच्चों को पकड़ के माता जी बोलते ए प्रभु जी को दंडवत करो, जबरदस्ती उसको पकड़े करना पड़ता, माता जी कहेगी तो बच्चा अपने आप कर लेगा, हम नहीं करते, हम अपने बाप के पांव नहीं पड़ते, हम चाहते हैं हमारा बेटा हमारे पांव पड़े, तो हम अपने जब उदाहरण हम बनेंगे वी बिकम एग्जाम्पल अवर सेल्फ, बच्चे अपने आप करना शुरू कर देंगे। आपके घर में कोई, मैं एक पहली बार मतलब कथा में जब सुना एक दिन में, भगवान श्री कृष्ण द्वारका में जब रहते थे, सुबह उठ के पहले अपने बड़ों के चरण स्पर्श करने जाते थे, जितने भी बड़े थे उनका जाके आशीर्वाद लेते थे, उस दिन मैं कथा के बाद गया, मैं देखा मेरे, मैं जहां रहता हूं मेरे दो बुजुर्ग बाकी बच्चे हैं सिर्फ, तो मैं सुबह उठ के घर से पहले नहा के उनका जाके चरण। पर जब भगवान ये उदाहरण सेट कर रहा है, हमको शिक्षा दे रहा है कि बड़ों से सुबह आशीर्वाद लेनी चाहिए, तो हम काहे के लिए, हम क्यों, हम इतने बड़े हो गए कि अपने बड़ों के सामने नहीं झुक सकते क्या? तो ये संस्कार बच्चों पे आएंगे और तब आपके हृदय से उनके लिए कुछ ऐसे भाव निकलते हैं जो उनकी सुरक्षा का कवच बन जाते हैं, इसको आशीर्वाद बोलते हैं। तो माता पिता की आशीर्वाद बच्चों के लिए सुरक्षा का कवच है, वो तब होता है जब उनके हृदय से ये निकलती है, वो तब निकलती है जब बच्चे बहुत आज्ञाकारी बनते हैं, और बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं, चरित्रवान तब बनते हैं जब उसको आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। आध्यात्मिकता के पात्रता में चरित्रता निवास करती है। द स्पिरिचुअलिटी रिजाइड इन ए कंटेनर, मॉरलिटी रिजाइड इन ए कंटेनर, व्हाट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। तो विश्व के अंदर स्पिरिचुअलिटी के अभाव के कारण करेक्टर नाम की कोई चीज रही नहीं है। मॉरलिटी और वैल्यूज इवरपोरेट हो रहे हैं प्लानिट अर्थ से, लाइक ईथर, कपूर की तरह सब वैल्यूज हमारी, वैल्यू की धज्जियां उड़ रही है, कोई सम्मान रहा नहीं है बड़ों बुजुर्गों का। तो ये इसका कारण क्या है? स्पिरिचुअलिटी में हम बैंक्रप्ट होते जा रहे हैं, हमारी आध्यात्मिकता इतनी बैंक्रप्ट हो रही है कि हम मॉरली डिग्रेड होते जा रहे हैं बिल्कुल। ये तो पुरानी कहावत है, वेल्थ इज गॉन नथिंग इज गॉन, पैसा हाथ का मेल है, आज गया कल आ जाएगा। हेल्थ इज गॉन समथिंग इज गॉन, स्वस्थ ठीक नहीं रहा तो कुछ हानि जरूर। करेक्टर इज गॉन एवरीथिंग इज गॉन, चरित्र गिर गया तो हम कहीं के नहीं रह गए। और आजकल चरित्र लोगों ने कोड़ियों के भाव बेचना शुरू कर दिया, शेलो फार शेलो लाइफ कितनी हो गई है हमारी, फॉर ओवरनाइट बिकमिंग मिलियनर वी हैव सेक्रीफाइज ऑल अवर वैल्यूज एंड करेक्टर। हमारे उसूलों की हमने बहुत बड़ी सौदेबाजी कर दी है शेलो शेलो प्रॉफिट्स के लिए, दे आर नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग। टाल बिल्डिंग और शार्ट टेम्पर्ड हम हो गए हैं, बिल्डिंग तो बड़ी बन रही है रहते हैं, लेकिन टेम्पर हमारा इतना शार्ट है, बच्चा भी चिल्लाता है तो हम बहुत उत्तेजित होकर गर्म हो जाते हैं। हाउस तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन फैमिलियां टूटी हुई हैं। ये सब कारण इसका एक ही है कि स्पिरिचुअलिटी का अभाव है, वो हमारे जीवन में आएगी तो ये जो गैप है ये फिल होगा, ये एक बहुत बड़ा गैप होता जाए, जो दरार बनता जा रहा है इसको किसी तरीके से वी हैव टू सेव द सोसाइटी बाय गिविंग द राइट डायरेक्शन टू अवर न्यू जनरेशन, बट दैट कैन ओनली टेक प्लेस इफ वी प्रैक्टिस अवर सेल्फ। अगर आप उठ के घर में सुबह 10 मिनट भगवान का नाम लेंगे, बच्चे आपसे पूछेंगे नहीं, अपने आप नकल करेंगे, दे विल स्टार्ट डूइंग इट, बट दे विल स्टार्ट डूइंग इट व्हेन दे आर बिलो 5। इफ दे आर अबव 15 देन दे विल थिंक दैट ये बेकार है, इसका दिमाग खराब हो गया, देन देयर होल थॉट चेंजेस। फिर तो उर्दू के कवि ने कहा है, वो सब किताब काबिल जबत है, वो सारे किताब बुक्स काबिल जबत है, मीन्स उनको सेंसर कर दो। बोला कौन से? जिसको पढ़ के बेटा बोले बाप को खफत है, वो किताब पढ़ने के बाद अगर बेटा बाप को बोले कि ये बेकार है, पुराना है, इसको कुछ नहीं आता, ऐसे किताब उनको पढ़ने दो। अभी तो बेटा बोलते तुम्हारे को क्या पता बाबा कंप्यूटर कैसे चलता है, अरे कंप्यूटर नहीं तो तेरे एक बाप को तो चलाया मैंने, तुम्हारे घर को तो मैं चला रहा हूं, कंप्यूटर नहीं चला तो क्या हुआ, तेरे को कौन चला रहा है, तेरे कंप्यूटर को मुझे नहीं चलाना था, तेरे को तो चलाना आ रहा है ना, तेरे को कौन स्कूल भेज रहा है, पढ़ा कौन रहा है, तो ये नहीं दिख रहा है क्या। तो ये बहुत ऐसी शिक्षा जो है ये नहीं होनी चाहिए। ये किसी कवि ने बहुत पहले किसी शायर ने लिखा था कि लोग ऐसे कहते हैं और ये सत्य है, तो बच्चों को बच्चे नहीं समझेंगे ऐसे। आजकल बच्चे मां बाप का मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तो सिर्फ नेट को मानते हैं, जो इंटरनेट पे दिखता है उसको मानते हैं, जो टीवी उसको सिखाती है, उनका गुरु, उनका भगवान, उनका माता पिता सब कंप्यूटर और टीवी हो गए, और कोई उसका मार्गदर्शन करने वाला रहा नहीं। इस वक्त दुनिया सा सब बच्चों का मार्गदर्शन इसके ऊपर चल रहा है, और कोई रास्ता नहीं उनके लिए बच गया। ये तो बिल्कुल स्पष्ट, पूरे सबसे ज्यादा बात को एक एक दो दो बजे तक बच्चे बैठे होते हैं नेट के ऊपर लटके हुए, रात सारी जागते हैं, हम तो अपने बच्चों को देख रहे हैं, तो हम कहते हैं हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी परफेक्ट है कि दुनिया में एक मिनट में क्या हो रहा है उसका हमको पता है, लेकिन हमारे ग्रोन अपन चिल्ड्रन आज रात को कहां है हमको मालूम नहीं है। वट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यू हैव, यू नो एवरीथिंग हैपनिंग इन द वर्ल्ड, नॉट व्हाट इज हैपनिंग इन योर ओन हाउस। तो कितना ये अभाव हमारे, तो उन बच्चों को ये स्टोरी एक बता देना, आखिर सब जब सिखाना हो उसको एक ये छोटी सी स्टोरी बच्चों को बता देना, कहीं बताते हैं। पत्नी ने बहुत परेशान पति को किया कि तेरे बाप खांसता है सारी रात, नींद खराब होती है, इसको हरिद्वार छोड़ के आ जा। ये भी घरों की कहानी है और ये सच्ची है, झूठी नहीं है। परेशान होके पति देव अपने पिता को बोला, चलो पिताजी आपको तीर्थ यात्रा करा के आऊंगा। जब हरिद्वार के रास्ते में गया, कहीं एक जगह पे रुका तो कहा, पापा यहां रुकिएगा, मैं आपके लिए कुछ भोजन पानी का प्रबंध करता हूं। बच्चा मुड़ा, बापा बाप बहुत हंसा और हंसने के बाद रोने लगा। बच्चा वापस लौट के आया, मुड़ के बोला, पापा हंस क्यों रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? बोला, बेटा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि तुम वापस नहीं आओगे मुझे मालूम है, और रो इसलिए रहा हूं कि मैं मेरे बाप को यहां छोड़ के गया था, मेरे बाप को मैं यहां छोड़ के गया था और आज तुम मेरे को यहां छोड़ के जा रहे हो, इसलिए मेरे को रोना आ रहा है। बेटे ने देखा कि तो इसका मतलब मेरा बेटा भी मेरे को यहां छोड़ के जाएगा। तो बाप को वापस घर ले आया, घर वाली को बोलो जैसे भी है ये मेरे से भी कल होने वाला है। तो बच्चों को बोला, भाई आप हमारी नहीं मान रहे हो, कल आपके बच्चे जब आपसे ऐसे करेंगे तब इसका आपको पता लगेगा, इसलिए इज इट बेटर टू बी अवेयर बिफोर इट इज टू लेट। पानी नाक तक आए उससे पहले अपना प्रबंध कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा। आज की कथा को यहाँ समाप्त करते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। मैं इसमें बोल गया, मैं कथा कर गया, मैं सब बोल गया, जो मुझे कहना था वो मैं कह गया, मैं सब कह गया। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। और इनके युद्ध की बात रह गई अभी। हाँ एक मैं आपको दूसरी बात बताऊं, नहीं बहुत सिंपल बात है, आप ऐसी यूनिवर्सिटी पसंद करते हैं जिसमें सिर्फ हिस्ट्री पढ़ाई जाए या ऐसी यूनिवर्सिटी आपको चाहिए जिसमें बहुत से ज्यादा सब्जेक्ट हो? कौन सा एडवांस यूनिवर्सिटी मानी जाएगी जिसमें ऑल सब्जेक्ट हो ना, तो सिर्फ एक हिस्ट्री तो नहीं है ना, हमारे पास ऑल सब्जेक्ट है, क्योंकि स्टूडेंट पता नहीं सब इंसान जो है वो एक ही स्तर से तो आए नहीं है, कोई स्वर्ग से नीचे उतरे हैं, बहुत बड़ा अपना पुण्य करके आए हैं, वो धर्मात्मा है, और कुछ लोग तो नरक से आए हैं जो इस दुनिया में आतंकवादी बन के लोगों को दुख दे रहे हैं। तो कौन कहां से आया है, उसको क्या पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सिटी में, उसके लिए वो कोर्स होना चाहिए ना। ये तो ऐसे है जैसे आप केमिस्ट्री अगर पढ़ रही हैं तो फिर आप काय के लिए फिजिक्स के लेबोरेटरी में जाएंगे, आपका कंपनी काम नहीं है ना वहां, आपका वहां काम नहीं है क्योंकि आप तो फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है। आप अगर मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो फिर आपको इंजीनियरिंग में जाने की जरूरत नहीं, आपका काम नहीं है वहां। तो ठीक इस प्रकार से कई लोग इस संसार में तमोगुण में होते हैं जो देवी देवताओं की पूजा में अपनी इच्छा के लिए करती रहते हैं, लेकिन जो लोग रजोगुण में हैं वो तो उनकी पूजा करते हैं जिनसे उनका लाभ होता है, लेकिन जो सतोगुण के व्यक्ति हैं वो भगवान की पूजा करते हैं जीवन अपना सार्थक करने के लिए। तो जो जिस मार्ग जिस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में उसी में उसको खुश रहना चाहिए, लेकिन दूसरों का निरादर नहीं करना चाहिए। मैं अगर मेडिकल पढ़ रहा हूं तो मैं कहूंगा इंजीनियरिंग बेकार है, ये तो ठीक नहीं है ना। जो इंजीनियर पढ़ रहा है उसलिए इंजीनियर ठीक है, मैं मेडिकल पढ़ रहा हूं तो मेरे लिए मेडिकल ठीक है, तो ये उसका हमको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसका एक भाव यहां भी ये बता दें आपको, मानो मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूं, मैंने जीवन कृष्ण को अर्पण कर रहा है, तो इसका मतलब जो दूसरा किसी देवी देवता की पूजा कर रहा है उसके लिए मेरे दिल में हीन भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस विचार को इतनी बुद्धि है वो यही काम कर रहा है। अभी कई आपके साथ कितने लड़के पढ़े थे मैट्रिक में, उसमें से कितने आपके कलीग इंजीनियरिंग में आए, दो तीन मुश्किल से आए, तो वो सब कहीं ना कहीं तो नौकरी दुकान कर रहे हैं ना, तो उनको आप कहेंगे ना वो बेकार है, नहीं जो उनकी योग्यता थी उसने वो की, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो उसको नीच तो नहीं देखना चाहिए ना। लेकिन इसको हम बहुत सरल ऐसे समझाते हैं, जब तक जानकारी नहीं है, लड़की अपने माँ बाप के घर में है तो माँ बाप के घर का काम करती है, सेवा करती है, वहीं देखभाल करती है। जिस दिन शादी हो गई तो फिर उसका पति सब कुछ हो जाता है, फिर उसको पति के अलावा और किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि माँ बाप के लिए कोई उसके लिए आदर नहीं रहता है। लेकिन पति के रिश्तेदार भी, माँ बाप, उसके भाई, उनका भी आदर करना पड़ता है। ठीक इस प्रकार से जिस दिन हमको ये पता लग जाता है कि हमारा जीवन एक भगवान को अर्पण करना है, तो जैसे लड़की की शादी होती है ऐसे वो भक्त भगवान से उसका विवाह हो गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहले जिनसे हमारा रिश्ता था उनका निरादर करना है। आदर करना एक बात करना है, तो स्त्री माता पिता को भी अपनी जगह पे टाइम पे आदर करती है, भाई बहन सबका करती है। लेकिन जीवन तो एक भगवान को दिया हुआ है ना, पति को दिया ना सबके साथ, तो ऐसे भक्ति एक भगवान की होती है। लेकिन मान सम्मान जहां जिसका जरूरी है वहां उसको देना चाहिए। भाई जाते हुए किसी देवी की पूजा रही तो वहां अगर गए तो नमस्कार देवी समझ के नमस्कार करने में कोई आपत्ति नहीं है। वो भगवान नहीं है, देवी है, ये समझ के नमस्कार करने में कोई आपत्ति नहीं है। वो खड़ा हुआ रास्ते के अंदर जो ट्रैफिक पुलिस वाला है उसको ट्रैफिक पुलिस वाला मान के गाड़ी रोकना तो ठीक है, गाड़ी तो आपको उसके कहने पर रोकनी है क्योंकि वो ट्रैफिक गवर्नर का है। लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर तो नहीं मानेंगे ना, उसको प्रेमन, लेकिन ताकत उसको भी है कि आपकी गाड़ी तो वो रोक सकता है। तो ये देवी देवता भी उस ट्रैफिक पुलिस वाले से ज्यादा शक्ति जाली है ना, गाड़ी तुम्हारी भी रोक सकते हैं ना, तो उसका आदर नहीं करोगे ये तो ठीक नहीं है ना। तो बिल्कुल ये जीवन का, लेकिन भगवान के साथ संबंध है वो तो ऐसे पति पत्नी का जैसे होता है कि और किसी से मेरा मतलब नहीं है वो ठीक होगा, तो सबको समझने में कोई आसानी नहीं। तो ये बहुत प्रैक्टिकल जिंदगी में बातें हैं जो करनी चाहिए, निरादर नहीं करना चाहिए, सम्मान जरूर करना चाहिए उसी स्तर पे उस जगह पे। प्रभुपाद अपने भक्तों के संग किसी मंदिर में गए तो देवी का मंदिर था, तो उस भक्तों को कहा जैसे मैं प्रणाम करना हूं वैसे आप प्रणाम करना। प्रभुपाद ने सीधे तरफ से प्रणाम देवी को प्रणाम किया दंडवत, और प्रणाम करने के बाद सबने वहां से किया, बोला देवी भगवान की शक्ति है, हम भी भगवान की शक्ति है, हमको उसको राइट साइड से प्रणाम करना चाहिए। और भगवान भगवान है, हम भगवान की शक्ति, इसलिए भगवान को प्रणाम लेफ्ट साइड से करना चाहिए। तो विधि विधान अपनी जगह पे है लेकिन आदर सम्मान देना बहुत जरूरी है। तो देवी देवताओं का सम्मान हमको निश्चित रूप से करना चाहिए। देखिए कोई मंत्री आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं कि देवी देवता उसके भी नीचे है, उससे कम है क्या? लेकिन पूजा जीवन सिर्फ एक भगवान को देना चाहिए, भजन सिर्फ एक भगवान का करना चाहिए। तो ये बहुत सटल साइंस है, बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक हमसे अपराध हो जाएंगे, तो अपराधों से बचेंगे तब हम आगे बढ़ सकेंगे। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? चलो सुंदर गोरंगा कीर्तन करो। 50 मिनट्स हो गया।